श्रोताओं, हमारा अगला अध्याय है राष्ट्रसंघ। आइए अध्ययन करते हैं राष्ट्रसंघ के विषय में। मानव जाति की प्रगति का इतिहास उसके विभिन्न उपकरणों की प्रगति का इतिहास है। प्रारंभ में ये उपकरण प्रायः आक्रमण और सुरक्षा के ही उपकरण थे। 16वीं शताब्दी तक तो मनुष्य को उद्दत समझा जाता था और समाज के हीरो योद्धा हुआ करते थे। 30 वर्षीय युद्ध में पहली बार मनुष्य कांप उठा था जब यूरोप शमशान जैसा हो गया था। कई पीढ़ियां पंगु हो गई थी। इसी पृष्ठभूमि में डच विचारक ग्रेसियन ने पहली बार युद्ध और शांति के विषय में सोचना शुरू किया और उनकी पुस्तक लॉ एंड पीस एंड वार एमंग नेशन अंतर्राष्ट्रीय कानून की पहली पुस्तक के रूप में सामने आई। यह एक प्रारंभिक प्रयास था और यूरोप के देश इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं थे। युद्ध का क्रम जारी रहा। फ्रांस के शासकों लुई 14वें तथा फ्रांस तथा 15वें फ्रेडरिक महान, रूस की जारीन कैथरीना तथा बाद में नेपोलियन ने सारे महाद्वीप को अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए रौंद डाला। नेपोलियन का अकेले सामना न कर पाने पर यूरोपीय देशों ने कई बार संघ बनाए और अंत में नेपोलियन का पतन हुआ। यूरोप के पुनर्गठन के लिए वियना में एक कांग्रेस की बैठक बुलाई गई। प्रतिक्रियावादियों ने प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए एक यूरोपीय संगठन बनाया। यह विभिन्न देशों द्वारा मिलजुल कर काम करने का एक प्रयास था। लेकिन जब ब्रिटिश विदेश मंत्री कैनिन ने हर देश अपने लिए और ईश्वर हम सब के लिए की घोषणा की तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो रूपरेखा थी वह ध्वस्त हो गई। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इसी बीच कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के रूप में मजदूरों का व्यापक सहयोग बढ़ता रहा। व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए देशों के बीच विकसित सहयोग के आधार पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जैसे विश्व डाक संगठन का भी विकास हो रहा था। क्रीमिया के युद्ध के बाद पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने की दिशा में कुछ प्रयास हुआ, लेकिन बर्लिन कांग्रेस तक यह बात फिर स्पष्ट हो गई कि सभी देश अपने हितों की पूर्ति के अतिरिक्त कुछ करने को तैयार नहीं हैं। बिस्मार्क की गुप्त संधियों की नीति ने इंग्लैंड और रूस जैसे देशों की परंपरागत प्रतिस्पर्धा के स्थान पर परस्पर समझदारी और समझौते को जन्म दिया। पूर्णता आक्रांत वातावरण में रूस ने जार निकोलस ने 1899 में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को संस्थागत रूप देने के लिए हॉलैंड की राजधानी हेग में सम्मेलन बुलाया। यहां मध्यस्थता के लिए आयोग का गठन हुआ। शस्त्रीकरण के निर्बाध प्रवृत्ति से आतंकित होकर 1907 में इस समिति को पुनर्जीवित किया गया, लेकिन विदेश मंत्री ग्रे ने आशंका व्यक्त की कि दिए बुझते जा रहे हैं और 1914 में विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय समझौता, युद्ध का विकल्प, विश्व संगठन आदि बातों पर बुद्धिजीवी चर्चा करते रहे। दक्षिण अफ्रीका का राजनेता जनरल स्टमस, फ्रांसीसी बुद्धिजीवी और कुछ जागरूक धनिक, अमेरिकी धन कुबेर, कार्नेगी और ब्रिटिश लेखक एच जी वेल्स इस दिशा में कार्यरत थे, लेकिन नकार खाने में तूती की आवाज़ कौन सुनता। इससे इनके हाथ में सत्ता तो थी नहीं। जैसे ही शांति के लिए एक विकल्प लेकर एक राजनेता प्रस्तुत करते, वैसे ही उनकी स्वीकृति की संभावना बढ़ गई। विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था और इतिहास के अधिकांश प्राध्यापकों की तरह आदर्शवादी। उसने जनवरी 1918 में जब अपने 14वें सिद्धांत की घोषणा की तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की बात की। ये शर्तें जब जर्मनी ने मान ली और पेरिस की एक शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए विल्सन स्वयं पहुंचा तो संभावनाएं बढ़ीं। पेरिस में विल्सन ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रसंघ के निर्णायक में सर्वाधिक महत्व देता है। इस विषय पर भावुकता की हद तक एस्प्रिक था और लायर्ड जार्ज तथा क्लामांसो ने राष्ट्रसंघ का विरोध करने की धमकी देकर विल्सन के साथ बहुत सी ऐसी बातें मनवा ली जिन्हें सामान्यता कभी स्वीकार नहीं करता। अंत में विल्सन ने लगभग अकेले संयुक्त अकेले राष्ट्रसंघ का संविधान तैयार कर डाला और पराजित देशों के साथ हुई संधियों के साथ राष्ट्रसंघ के निर्माण के समझौते पर भी विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर कर दिए। यह विल्सन की व्यक्तिगत जीत थी। 26 धाराओं वाले संविधान को जनवरी 1920 में बाकायदे क्रियान्वित कर दिया गया। प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 21 थी लेकिन बाद में बहुत देर सदस्य बन गए। राष्ट्रसंघ के केंद्रीय कार्यालय के लिए स्विट्जरलैंड ने मनोरम नगर जेनेवा को चुना गया। 20 वर्षों तक यह अनूठा प्रयोग चलता रहा लेकिन पहले दशक की सफलताओं के बाद ही यह संस्था लड़खड़ाने लगी। राष्ट्रीय हितों के लिए जिस तालमेल और समन्वय की आवश्यकता थी उसके लिए अभी अनुकूल वातावरण नहीं था। परिणामस्वरूप द्वितीय महायुद्ध की निकटता आती बाढ़ को राष्ट्रसंघ रोक नहीं सका और उसी में बह गया। राष्ट्रसंघ का स्वरूप। राष्ट्रसंघ के लिए 3 इकाइयों का गठन हुआ। सभी देशों की व्यवस्थापिका जैसी संस्था असेंबली महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए, कुछ देशों की कार्यपालिका जैसे परिषद और राष्ट्रों के बीच विवादों के हल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बनाया गया असेंबली। राष्ट्रसंघ की यह पहली प्रतिनिधि सभा थी जिसमें सभी सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त थे। हर सदस्य अधिक से अधिक 3 प्रतिनिधि भेज सकता था लेकिन सब देशों को एक ही मत प्राप्त था। इसका अधिकार था सदस्यता प्रदान करना और प्रस्तावों पर विचार करना। असेंबली का साधारण अधिवेशन प्रतिवर्ष सितंबर में होता था। प्रति अधिवेशन के लिए एक अध्यक्ष और 6 उपाध्यक्ष चुने जाते थे। विभिन्न कार्यों के लिए 6 विषय समितियां, वैधानिक और कानून समिति, तकनीक समिति, निशस्त्रीकरण समिति, बजट और अर्थ समिति, सामाजिक संस्था समिति और राजनीतिक समिति चुनी ली जाती थी। असेंबली प्रजातांत्रिक ढंग की संस्था थी जहां छोटे बड़े में अंतर नहीं था लेकिन इसके अधिकार इतने सीमित थे कि यह मात्र संभाषण या वाद विवाद का केंद्र बनकर रह गई। वस्तुतः यह भी संभव था कि यहाँ किए गए निर्णय बहुमत को स्वीकार हो सकते थे लेकिन बड़ी शक्तियाँ असेंबली में अपने प्रभाव या काउंसिल के माध्यम से ऐसा होने नहीं देती। काउंसिल परिषद या काउंसिल में 2 सदस्य होते थे, अस्थाई और अस्थाई। 5 बड़ी शक्तियाँ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान की अस्थाई सदस्यता का प्रावधान था लेकिन जब अमेरिका सदस्य नहीं हुआ तो अस्थाई सदस्य 4 ही रह गए। प्रारंभ में असेंबली द्वारा 4 अस्थाई सदस्यों को 2 वर्षों के लिए निर्वाचित करने का विधान था लेकिन सदस्यता घटती बढ़ती रही और अंतिम दिनों में 3 अस्थाई और 11 अस्थाई सदस्य हो गए। परिषद की भी राष्ट्रसंघ में सर्वाधिक निर्णायक भूमिका थी। इसका नियमित अधिवेशन 2 वर्षों में एक बार ही होता था लेकिन आवश्यकता अनुसार अधिवेशन कभी भी हो सकता था। आवश्यक और महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अस्थाई सदस्यों की सर्वसम्मति आवश्यक थी। आज के संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की तरह किसी को स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था लेकिन व्यवहार में किसी भी निर्णय को निरर्थक कर देती थी। परिषद ही युद्ध और शांति जैसे प्रश्नों पर निर्णय करती थी और उसी पर उन्हें क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व था। उसे राष्ट्रसंघ द्वारा शासित क्षेत्रों के प्रबंध, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और देशों के परस्पर वाद विवाद निपटाने का काम करना पड़ता। बैठकों में विदेशी मंत्री या कभी प्रधानमंत्री तक शामिल होते थे। इससे यहाँ किए गए कार्यों का महत्व बढ़ जाता है परंतु विडंबना यह थी कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था को चलाने के लिए बड़ी शक्तियों की सहमति आवश्यक थी। इससे सामान्य सदस्यों में असंतोष बढ़ता था। इसके निर्णय इतने सीमित हितों के लिए होते थे कि अन्य देशों का अविश्वास स्वाभाविक था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रसंघ का तीसरा घटक था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की शुरुआत हुई। इसे ध्यान में रखकर 1921 में राष्ट्रसंघ के विधान की 14वीं धारा के अंतर्गत हेग में विश्व न्यायालय की स्थापना की गई। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति व्यक्तिगत प्रतिभा और प्रसिद्धि के आधार पर होती थी, किसी देश के प्रतिनिधि के रूप में नहीं। इसका प्रमुख कार्य देशों में विवाद को विस्फोटक होने से पहले हल करना था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की ही नहीं की ही स्थिति इतनी अस्थिर और अपरिभाषित थी कि उसके आधार पर किए गए फैसलों का क्या होगा। इस न्यायालय में अपने विवाद को ले जाने या न ले जाना पूरी तरह सम्मत देशों की मर्जी पर निर्भर था। इस प्रकार यहाँ के निर्णयों को मानना या न मानना उनकी इच्छा पर निर्भर था, कहीं कोई अनिवार्यता या बंधन नहीं था। इसलिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न या तो उठाया नहीं जाता था या उस पर निर्णय नहीं हो पाता था। यदि हुआ तो उसका क्रियान्वयन नहीं हो पाता था। छोटे देशों के विवाद का अवश्य निपटारा हो जाता था। इस प्रकार विशेष सार्थक भूमिका न होने के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को विकसित करने की यह उपयुक्त माध्यम था। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इसे बरकरार रखा है। सचिवालय जिनेवा में राष्ट्रसंघ के दैनंदिक कार्यों के लिए एक सचिवालय का प्रबंध किया गया, जिसमें विभिन्न देशों के कर्मचारी कार्य करते थे, लेकिन फ्रेंच भाषा की प्रमुखता के कारण अन्य भाषा के लोगों को यहाँ पहुँचने और कार्य करने में कठिनाई होती थी। पहले महासचिव ब्रिटेन के सर जेम्स एरिक डुमांड नियुक्त हुए और उन्होंने 1933 तक कार्य किया। इसके बाद महासचिव की नियुक्ति का अधिकार परिषद को दे दिया गया। बाद में फ्रांस के जोसेफ ओवेनेल और आयरलैंड के 3 सेलेस्टर ने भी कार्य किया, लेकिन उसके समय तक राष्ट्रसंघ पंगु हो चला था और 2 सह और 2 उप सह सचिवों की सहायता से महासचिव 11 विभागों जैसे सामान्य प्रशासन, संरक्षण, निशस्त्रीकरण, स्वास्थ्य, अल्पसंख्यक जातियां